अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में रुद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में केवल 3 ऐसे सूक्त हैं जिनके देवता रुद्र हैं। इससे यह सूचित होता है कि ऋग्वेद के समय में रुद्र का विशेष महत्व नहीं था, पर बाद में विकसित हुए पौराणिक धर्म में शिव के रूप में रुद्र देवता ने अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया और विष्णु के समान उनकी भी विशेष रूप से पूजा होने लगी। ऋग्वेद में रुद्र मानव रूप में वर्णित है क्योंकि वहां उनके हाथों भुजाओं, रंग, होठ, उदर, मुख, जिह्वा और दांतों आदि का उल्लेख किया गया है। बाद के समय में शिव की कल्पना जिस रूप में की गई उसका मूल भी ऋग्वेद में विद्यमान है। एक मंत्र में उन्हें नीलग्रीव अर्थात नीलकंठ कहा गया है और एक मंत्र में कृतिवासा अर्थात चर्म धारण करने वाला, एक मंत्र में कपर्दी विशेषण उनके साथ प्रयुक्त किया गया है जिससे उनके सिर पर जटाजूट का होना सूचित होता है। वे पर्वत पर निवास करते हैं। उनका प्रधान अस्त्र धनुष वान है, पर वे वज्र भी धारण करते हैं। वे मृग अर्थात सिंह की भांति भीम और हनन के लिए उग्र हैं। उन्हें वृषभ भी कहा गया। एक मंत्र में उनके लिए शिव संज्ञा का भी प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक युग में इस देवता को प्रधानतया शिव ही कहा जाता था। उस काल में शिव का एक नाम त्र्यंबकम भी विशेष रूप से प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक भी कहा गया है। इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद के देवताओं में रुद्र का स्थान गौण है, पर यजुर्वेद और तथा अथर्ववेद में उनका महत्व बढ़ गया है। यजुर्वेद के 16वें अध्याय अर्थात सतरुद्रीय प्रकरण में रुद्र देवता ने प्रायः वही रूप प्राप्त कर लिया है जो उत्तर वैदिक तथा पौराणिक युगों में शिव का था। वहां रुद्र को पशुनाम पति व पशुपति, जगताम पति अर्थात विश्व का स्वामी, शंभु, शंकर, शिव आदि नामों से कहा गया है। उनके रुद्र भयंकर और शिव अर्थात मंगलकारी दोनों प्रकार के रूप हैं। प्रसन्न होने पर वे अपना शिवातनु अर्थात मंगलमय रूप प्रकट करते हैं और क्रुद्ध होने पर रुद्र रूप अर्थात भयंकर रूप। रुद्र की प्रार्थना करते हुए ऋषि आंगिरस कुत्स ने एक मंत्र में कहा है, क्रोध में आकर आप हम उपासकों, हमारे माता पिताओं, हमारी संतान एवं परिजनों, हमारी गौओं और घोड़ों आदि पशुओं को क्षति न पहुँचाएं। अथर्ववेद में रुद्र के लिए भव, सर्व, पशुपति और भूतपति संज्ञाओं को प्रयुक्त किया गया है। वेदों में रुद्र शिव की रोगों का निवारण करने वाली शक्ति का भी उल्लेख है, जिसके परिणाम स्वरूप ही बाद के काल में शिव के वैद्यनाथ रूप का भी विकास हुआ। रुद्र शिव का जो रूप बाद में हिंदू या पौराणिक धर्म में विकसित हुआ उसके अनुसार शिव भूतपति और पशुपति ही हैं। इस रूप का विकास उत्तर वैदिक युग में ही प्रारंभ हो गया था। पृथ्वी स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि देवता का प्रमुख स्थान है। उनकी स्तुति में 200 से भी अधिक सूक्त ऋग्वेद में विद्यमान हैं। द्यूलोक का सूर्य और अंतरिक्ष लोक की विद्युत भी अग्नि के ही रूप हैं। पर पृथ्वी पर जो भौतिक अग्नि है यागिक कर्मकांड के लिए उसी का उपयोग है। वेदों में उसका जो वर्णन मिलता है वह भौतिक अग्नि के रूप में है और साथ ही मानव के रूप में भी। भौतिक अग्नि का भोजन हव्य, अन्न और घृत है। जंगलों को वे चबा डालते हैं और अपनी जिह्वाओं से चाट चाट कर काला कर देते हैं। उषा, सूर्य और विद्युत के समान वे भी प्रकाशमान हैं। उनकी लपटें ऊपर की ओर लपकती है और वायु के झोंकों से उनकी ज्वालाएं गगन को चूमने लगती हैं। यह वर्णन स्पष्टतया भौतिक अग्नि का है, पर मानव रूप में भी अग्नि देवता का वर्णन किया गया है जिसमें उनकी तुलना वृषभ, सेन और अश्व के साथ की गई है। उनके सहस्त्र नेत्र तथा सहस्त्र श्रृंग हैं। अपने हाथों में वे अनेक विध उपहार धारण किए रहते हैं। उनको सुजीव अच्छी जीभ वाला और हिरण्य दंत अर्थात सुनहरे दांतों वाला भी कहा गया है। उनका वर्ण सूची है। भौतिक अग्नि का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक गृह में उसका निवास होता है, इसीलिए अग्नि को गृहपति भी कहा गया है। मनुष्यों की बस्तियों की स्थिरता एवं समृद्धि अग्नि पर ही निर्भर रहती है। अग्नि जनता की रक्षक है एवं उसे द्रवीन प्रदान करने वाली है। मनुष्यों का आर्थिक जीवन तो अग्नि पर निर्भर करता ही है, पर साथ ही धार्मिक कर्मकांड तथा देवताओं की पूजा तथा संतुष्टि भी अग्नि द्वारा ही की जाती है। वैदिक युग में आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था। यज्ञ कुंड में अग्नि का आगधान कर देवताओं को आवाहन किया जाता था और यह समझा जाता था कि अग्नि कुंड में दी गई आहुति देवताओं के पास पहुंच जाती है। इसीलिए वैदिक धर्मानुष्ठान में अग्नि का बहुत महत्व था। उसे यज्ञ का देवता माना जाता था और ऋषि तथा पुरोहित एवं हुता तथा ऋत्विक सब कुछ समझा जाता था। पृथ्वी स्थानीय देवताओं में सोम का स्थान भी महत्वपूर्ण है। यागिक कर्मकांड का सोम याग प्रमुख अंग था, अतः स्वाभाविक रूप से सोम को एक महान देवता माना जाता था। ऋग्वेद के नवम मंडल में 144 सूक्त हैं, जिन सबका देवता सोम हैं। इनके अतिरिक्त अन्य मंडलों में भी कतिपय सूक्त ऐसे हैं जिनके देवता सोम हैं। सोम एक वनस्पति होती थी जिसके रस को वैदिक आर्य बल तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला पेय समझते थे। सोमलता को किस प्रकार एकत्र किया जाए, पत्थरों से कूट कर उसकी छाल को कैसे अलग किया जाए, फिर रस कैसे निकाला जाए और किस प्रकार उसे छाना जाए, इन सबके संबंध में स्पष्ट संकेत ऋग्वेद में विद्यमान है। सोम रस का प्रयोग न केवल पीने के लिए ही किया जाता था, अपितु यज्ञ कुंड में उसकी आहुतियां भी दी जाती थी। वैदिक आर्य सोम रस को अत्यंत गुणकारी मानते थे। उसका पान कर उन्हें अत्यधिक उल्लास की अनुभूति होती थी। वे यह समझते थे कि इस रस को पीने से देवों और मनुष्यों को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सोम का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता था। प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ औषधि होने के कारण सोम वनस्पतियों का राजा कहा गया है और अन्य वनस्पतियों को सोम की राजा। वेदों में जिस सोम की देवता के रूप में स्तुति की गई है वह एक अत्यंत गुणकारी पार्थिव वनस्पति है। उसके गुणों के कारण ही उसे देवता का रूप प्रदान किया गया है। आर्य जाति के लोगों में सोम का यह महत्व उस युग में ही विकसित हो गया था जबकि आर्यों की ईरानी शाखा भारतीय शाखा से पृथक नहीं हुई थी। पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में सोम को होम रूप में लिखा गया है। होम भी एक वनस्पति है जिसके रस को अत्यंत गुणकारी कहा गया है और उसे भी देवता की स्थिति प्राप्त है। सोम और अग्नि के समान ही महत्वपूर्ण एक अन्य पृथ्वी स्थानीय देवता बृहस्पति हैं। इनकी स्तुति में ऋग्वेद में 11 सूक्त विद्यमान हैं। यागिक कर्मकांड के लिए उनका विशद महत्व है क्योंकि सब प्रार्थनाओं स्तुतियों तथा मंत्रों के बृहस्पति ही प्रेरक हैं। यज्ञों में वे देवों का पुरोहित करते हैं, उनके बिना यज्ञ सफल नहीं हो पाता। यागिक अनुष्ठान में पुरोहित के रूप में उनका कार्य स्तुति मंत्रों का उच्चारण करना है। वे अपने ऐसे मित्र गायकों के साथ मिलकर स्तुति गान करते हैं जिनकी वाणी हंसों जैसी मधुर होती है। बृहस्पति के अन्य नाम ब्राह्मण अस्पति और वाचस्पति है। विविध नदियों और स्वयं पृथ्वी भी पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। ऋग्वेद की नदियों में सरस्वती प्रधान है। अनेक सूक्तों में उसका स्तवन किया गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 21 नदियों का उल्लेख है जिनमें सरस्वती, सिंधु, सुतुद्री, परुसिनी, सरयू, गंगा, यमुना और बिपाशा विशेष महत्व की है। भारत में आकर जिन नदियों के तटवर्ती प्रदेशों में वैदिक कारियों ने अपनी बस्तियां बसाई थी और जिनके जल पर उनका आर्थिक जीवन निर्भर था, उन्हें यदि वे देवता के रूप में मानने लगे तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। पृथ्वी के प्रति भी वैदिक कारियों को प्रगाढ़ अनुराग था। अथर्व वेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है, जिसमें इस आर्य भूमि के प्रति अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदर्शित की गई है। अन्य वैदिक देवता धियु स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय देवताओं के अतिरिक्त अन्य भी कतिपय देवता वेदों में आए हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेदों में अनेक स्थलों पर देवता से केवल वह पदार्थ या सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबोधन कर या जिसके विषय में मंत्र की रचना की गई है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पुरुरवा, एल और उर्वशी का संवाद है। इस सूक्त में जिस मंत्र का ऋषि पुरुरवा है उसका देवता उर्वशी है और जिसकी ऋषि उर्वशी है उसका देवता पुरुरवा है। यही बात यमी सूक्त के संबंध में भी कही जा सकती है। जिन अन्य प्रकार के देवताओं की वैदिक मंत्रों में स्तुति की गई है उन्हें अनेक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे भावात्मक देवता, कृत्र देवता और देवियां। भावात्मक देवताओं में मन्यु, श्रद्धा, अनुमति, अर्मति अर्थात भक्ति, निरिक्ति अर्थात रोग व दुर्भाग्य, काम, काल, स्कंभ और प्राण उल्लेखनीय हैं। ये सब विशिष्ट भावों के सूचक हैं, पर वेदों में इन्हें मानव रूप में कल्पित किया गया है और इनकी स्तुति में भी कतिपय मंत्र कहे गए हैं। कर्त्री देवताओं में त्वष्टा और प्रजापति प्रधान है। त्वष्टा तक्षण कार्य में अत्यंत कुशल हैं और अपनी कला का प्रयोग कर अनेक विध वस्तुओं की रचना करते हैं। इंद्र के लिए वज्र का निर्माण उन्हीं द्वारा किया गया था और उन्होंने ही बृहस्पति या ब्राह्मणस्पति के आयस अर्थात परशु को पैना किया था। सृजन या निर्माण कार्य को भावात्मक रूप देकर त्वष्टा देवता की कल्पना की गई थी। इसी प्रकार के कर्ण देवता विश्वकर्मा प्रजापति हैं, जिन्हें संपूर्ण विश्व का सृष्टा कहा गया है। ऋभु एक अन्य देवता हैं जिन्होंने एक ऐसा रथ बनाया था जिसमें घोड़ा नहीं जोता जाता था, जिसमें 3 चक्र थे और जो समस्त लोक में अबाध गति से जाता आता था। ऋभु ने इस रथ का निर्माण अश्विनों के लिए किया था। उन द्वारा बनाए गए घोड़ों और गांवों का वर्णन भी ऋग्वेद में आया है। ऋभु के माता पिता वृद्धावस्था के कारण बहुत क्रिस्त तथा जीर्ण शीर्ण हो गए थे। उन्होंने उन्हें फिर से युवा बना दिया था। इस प्रकार के कितने ही अद्भुत कार्यों का श्रेय वेद में ऋभु देवता को दिया गया है। उनके संबंध में यह भी कहा गया है कि वस्तुतः वे मनुष्य थे, पर अपने सुकर्मों तथा दक्षता के कारण उन्होंने अमृतत्व प्राप्त कर लिया था। ऋभु शब्द का प्रयोग वेद में प्रायः बहुवचन में ऋभव के रूप में आया है। वाक, इड्डा, सरस्वती, मही, पुरंधी, धीष्णा, सरयु, शरणयु, इंद्राणी, कुहु, प्रश्नी आदि कतिपय देवियों की स्तुति में भी अनेक मंत्र ऋग्वेद में विद्यमान हैं। कुछ मंत्रों में उर्वशी सदृश अप्सरा तथा विश्वावसु सदृश गंधर्व का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक स्थान पर इंद्र से प्रार्थना की गई है कि सीसन देवा हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें। एक अन्य स्थानों पर सीसन देवों के पूर्व अर्थात दुर्ग के इंद्र द्वारा जीत लिए जाने का वर्णन है। सीसन देवा उन लोगों को कहा जाता था जो सीसन अर्थात जननेन्द्रिय की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के भग्नावशेष में ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं जिनसे वहां के निवासियों का मातृ देवता का पूजक होना सूचित होता है। संभवतः ऋग्वेद में उन्हें ही सीसन देवाह कहा गया है। इनके संपर्क से बाद में आर्यों ने भी सीसन पूजा या लिंग पूजा को अपने धर्म में सम्मिलित कर लिया था। यद्यपि शुरू में वे इन सीसन देवों के शत्रु थे और उनसे घृणा करते थे। देव पूजा की विधि डैश। इसमें संदेह नहीं कि वैदिक युग के आर्य बहुत से देवी देवताओं को मानते थे और देवताओं की पूजा उनके धर्म का महत्वपूर्ण अंग थी। यह देव पूजा यागिक कर्मकांड द्वारा की जाती थी। यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर उसमें अन्न, समीधा, दूध, घी और सोमरस की आहुतियां देना इस यागिक कर्मकांड का मुख्य रूप था। यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए मंत्रों का पाठ किया जाता था और साथ ही शाम का गायन। इनके लिए पुरोहितों की सहायता भी ली जाती थी। यद्यपि आर्य गृहस्थ अपने दैनिक यज्ञों का अनुष्ठान स्वयं भी कर लिया करते थे, क्योंकि वैदिक युग में यागिक विधि विधान जैसे वैसे जटिल एवं आडंबर में नहीं हुए थे जैसे कि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों के समय में हो गए थे। यज्ञों द्वारा देवताओं का आवाहन कर तथा दूध, घी, अन्न आदि की आहुतियों से उन्हें संतुष्ट कर आर्य लोग अपने इन देवताओं से प्रजा, पशु, अन्न और तेजस्विता की प्राप्ति की याचना किया करते थे। दूसरा, वैदिक देवताओं का स्वरूप। पिछले प्रकरण में वैदिक देवताओं का समान परिचय दिया गया है। यह स्पष्ट है कि वेदों में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि बहुत से देवताओं के नाम आए हैं और उनकी स्तुति में अनेक सूक्त व मंत्र वेदों में विद्यमान है। वर्तमान समय में विश्व की सर्वोच्च शक्ति एवं सृष्टि के कर्ता, पालक तथा संहर्ता के रूप में जिस परमेश्वर व भगवान की सत्ता में विश्वास किया जाता है, जो अकेला संपूर्ण संसार का स्वामी है और जिसकी उपासना द्वारा मनुष्य स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति की आशा रखता है, उस एक देवाधिदेव ईश्वर की पूजा उपासना के संकेत भी वेदों में पाए जाते हैं, पर उनमें स्पष्ट रूप से जिन उच्च सत्ताओं की प्रार्थना स्तुति की गई है वे इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम आदि देवता ही हैं। प्रश्न यह है कि इन देवताओं का क्या स्वरूप था या वैदिक युग के आर्य इन्हें किस रूप में मानते थे। इस संबंध में आधुनिक विद्वानों का यह मत है कि देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। प्रकृति में हमें जो बड़ी शक्तियां दिखाई देती हैं, जिन रूपों में प्रकृति की शक्तियां अपने को अभिव्यक्त करती हैं, वैदिक ऋषियों ने उन सब को मूर्त मानव रूप में कल्पित कर लिया था। प्रकृति की शक्ति का एक स्थूल व प्रत्यक्ष रूप सूर्य है। मनुष्यों के जीवन तथा सुख समृद्धि के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। सूर्य के उदय होने पर सब कोई जाग कर अपने अपने कार्य में व्यापृत हो जाते हैं। सूर्य से हमें धूप, प्रकाश और गर्मी की प्राप्ति होती है। अन्न का उगना और फसल का पकना सूर्य पर निर्भर है। वैदिक ऋषि प्रतिदिन सूर्य को उदय होते हुए और फिर संपूर्ण आकाश का चक्कर लगाकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए देखते थे। उनके काबुमय मस्तिष्क ने कल्पना की कि सूर्य एक मानव है जो अपने रथ पर चढ़कर संपूर्ण आकाश की परिक्रमा करता है। इस रथ में 7 घोड़े जुते होते हैं। ऋषियों के कल्पनाशील मस्तिष्क ने सूर्य को सुपर्ण अर्थात पक्षी और सेन के रूप में भी देखा और एक जीवित जागृत प्राणी के रूप में उनकी कल्पना कर ली। यही बात प्रकृति की अन्य शक्तियों के संबंध में भी हुई। वेदों में इंद्र, मित्र, वरुण आदि का मानव रूप में जो वर्णन है उसका यही कारण है। पर वैदिक देवताओं के स्वरूप के संबंध में एक अन्य मत भी है जिसका यहाँ उल्लेख किया जाना चाहिए। यास्काचार्य ने निरुक्त में यह प्रतिपादित किया है कि वैदिक शब्द यौगिक है, रूढ़ी नहीं। वैदिक में अग्नि शब्द भौतिक या पार्थिव अग्नि के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता, इसके अन्य भी अर्थ हैं। अग्नि कस्मात अग्रणी भवति, अग्रणी को ही अग्नि कहा जाता है। अग्नि का अर्थ अग्रणी है, इसीलिए सेना के सेनापति को भी अग्नि कहा जा सकता है और देश के राजा या राष्ट्रपति को भी। परमेश्वर के लिए भी अग्नि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह संपूर्ण संसार का अग्रणी है। वेदों में जहाँ जहाँ अग्नि की स्तुति की गई है, वहाँ सर्वत्र ही यह नहीं समझा जा सकता कि पृथ्वी स्थानीय अर्थात भौतिक या पार्थिव अग्नि को ही देवता रूप में से कल्पित कर उसकी स्तुति उन मंत्रों से अभिप्रेत है। कितने ही ऐसे मंत्र हैं जिनमें अग्नि का अर्थ स्पष्ट रूप से परमेश्वर है। उदाहरण के लिए इस मंत्र को लीजिए, यो मर्तेषु अमृतम रित्तावा देवो देवस्वर तीर निधाई होता यजिष्ठो महान सूचधे हब्बे रग्नि रमनुष इरे एवे। जो अग्नि मरण धर्मा मर्त्यों में अमर सत्य स्वरूप अर्थात रितावा देवों का भी देव सर्वत्र व्याप्त होता महत्वयुक्त तथा अतिशय पूजनीय है, मनुष्यों को चाहिए कि उसे सुख प्राप्ति के लिए पवित्रता ज्ञान के प्रकाश एवं कांति को पाने के लिए अपने हृदयों में धारण करे। इस मंत्र में अग्नि को देवेशु देवा और रित्या कहा गया है। देवता रूप में कल्पित पार्थिव अग्नि के लिए ये विशेषण संगत नहीं है, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए ही संगत हो सकते हैं। एक अन्य मंत्र में अग्नि की प्रशंसा में यह कहा गया है कि दस्युओं को प्राभूत कर उसने आर्यों के लिए उरु ज्योति का प्रसार किया है। यहाँ स्पष्ट रूप से अग्नि एक ऐसे आर्य नेता या अग्रणी को सूचित करता है जिसने दस्युओं को प्रास्त कर आर्यों के मार्ग को प्रशस्त किया था। आधुनिक समय के विद्वानों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने यास्क के मत का अनुसरण कर वैदिक शब्दों के यौगिक अर्थ किए हैं। अग्नि इंद्र आदि से वे विशिष्ट देवताओं का ग्रहण नहीं करते, अपितु यौगिक अर्थ लेकर इन शब्दों को अग्रणी आदि के लिए ही प्रयुक्त हुआ मानते हैं। उनका यह भी मत है कि वैदिक मंत्रों की व्याख्या तीन प्रकार से की जा सकती है, आधि भौतिक आध्यात्मिक तथा आधि दैविक अर्थों में। अग्नि का आधि भौतिक अर्थ स्थूल पार्थिव या भौतिक अग्नि है, पर आधि दैविक अर्थ में अग्नि से सूर्य विद्युत आदि का ग्रहण होता है जो अग्नि के ही रूप हैं। अध्यात्म अर्थ में अग्नि वह देवों का देव है जो अमर सत्य स्वरूप तथा सर्वव्यापक है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितने ही मंत्रों में इंद्र का अर्थ राजा किया है और कितने ही मंत्रों में परमेश्वर। अग्नि वरुण आदि के अर्थ में भी अग्नि वरुण आदि के अर्थ भी उन्होंने विभिन्न प्रकार से किए हैं। यास्क और दयानंद के अनुयायी वैदिक विद्वान वैदिक देवताओं को प्रकृति की शक्तियों का मूर्त मानव रूप नहीं मानते, वे उनका यौगिक अर्थ करते हैं और प्रसंग के अनुसार इंद्र आदि का अर्थ परमेश्वर या राजा आदि प्रतिपादित करते हैं। वेद मंत्रों का यौगिक अर्थ करने पर उनके वास्तविक अभिप्राय को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, इसके लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। ऋग्वेद का एक मंत्र है, निश्चर्मन रिभवो गाम प्रिशत संबत्त सेना सृजता मात्रम पुनः, अर्थात सायन के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रिभुओं ने एक मरी हुई गाय के सदृश दूसरी गाय बनाकर उस पर मृत गौ का चमड़ा चढ़ा दिया और मृत गाय के बछड़े से उसे युक्त कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती की शैली का अनुसरण कर इस मंत्र के अर्थ अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं। गौ शब्द का अर्थ जहाँ दूध देने वाली गाय है वहाँ पृथ्वी भी है। वर्षा के अभाव में पृथ्वी का चर्म सूख गया है और वह निश्चर्म हो गई है। रिभु का अर्थ सूर्य की किरणें हैं जिन द्वारा बरसाई हुई वर्षा से सूखी भूमि में जीवन का संचार हो जाता है। वृक्ष वनस्पति आदि पृथ्वी के वत्स हैं, जो अब फिर गौरूपी पृथ्वी का दुग्धपान करने लगे हैं। गाय और पृथ्वी के समान गौ का एक अर्थ सरस्वती भी है। सरस्वती रूपी इस गौ का चर्म, वाक्य और दूध अर्थ है। गुरु के अभाव में सरस्वती का समुचित विकास नहीं हो पाया और यह गौ चर्म शेष रह गई। गुरु के उपदेश रूपी किरणों से सरस्वती में जीवन का संचार हो जाता है, जिससे शिष्य रूपी वत्स उसका स्तन्य पान करने लगता है। गौ का अर्थ केवल गाय पशु ही नहीं है, अपितु उसके अन्य भी अनेक अर्थ हैं। वैदिक साहित्य की अंतःसाक्षी द्वारा भी इस तथ्य को प्रतिपादित किया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में गौ का अर्थ इंद्रियां किया गया है। समिंद्रियेनी तिंद्रियम वैवीर्य वीर्य गावः। गौ का पर्यायवाची शब्द धेनु है। अथर्व वेद में धेनु का अर्थ पृथ्वी किया गया है और अग्नि को उसका वत्स कहा गया है। पृथ्वी धेनु सत्तस्या अग्नि रवतस। इसी प्रकार धेनु के अंतरिक्ष दिशा और ध्यो अर्थ भी किए गए हैं। यदि महर्षि दयानंद सरस्वती के मत को स्वीकार कर लिया जाए तो वैदिक देवताओं का वह अभिप्राय हो ही नहीं सकता जिसे आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने प्रतिपादित किया है और जिसका उल्लेख इस अध्याय के पहले प्रकरण में किया गया है। वैदिक सूक्तों के जिन देवताओं के नाम दिए गए हैं वे उस विषय व पदार्थ को ही सूचित करते हैं जिनका प्रतिपादन सूक्त या मंत्र में किया गया हो। जिन सूक्तों के देवता इंद्र हैं उनमें इंद्र के कार्यों का वर्णन है या इंद्र की स्तुति की गई है। देवता का वहाँ वह अभिप्राय नहीं है जो अंग्रेजी गॉड्स से सूचित होता है। इंद्र आदि से वेद मंत्रों में या तो परमेश्वर अभिप्रेत है या प्रसंग के अनुसार राजा या नायक आदि। इंद्र की स्तुति में जो बहुत से मंत्र ऋग्वेद में आए हैं उनमें एक एव देव परमेश्वर की ही स्तुति की गई है, किसी देवता विशेष की नहीं। एक मंत्र में यह कहा गया है कि जो एक ही इंद्र पृथ्वी पर रहने वाले पांच प्रकार के मनुष्यों तथा सब धनों का स्वामी है वही उपास्य है। इसी प्रकार एक अन्य मंत्र में यह कहा गया है कि जो अकेले ही दानशील मनुष्य होने के लिए धन प्राप्त प्रदान करता है वह अद्वितीय शक्तिशाली सबका ईशान अर्थात स्वामी इंद्र ही है। इन मंत्रों का इंद्र किसी ऐसे देवता का सूचक नहीं है जिसका क्षेत्र केवल अंतरिक्ष तक सीमित हो। वस्तुतः इंद्र मित्र वरुण आदि एक ईश्वर या एक सत्ता के ही विविध नाम हैं और ये उसी सर्वोच्च सत्ता की विविध शक्तियों व स्वरूपों को अभिव्यक्त करते हैं। वैदिक देवता कोई विभिन्न व पृथक सत्ताएं नहीं हैं, वे एक ही सत्ता के विभिन्न रूप मात्र हैं। वैदिक ऋषियों को इस विषय में कोई भी बीज चिकित्सा नहीं थी, इसीलिए ऋषि वसुश्रुत आत्रेय ने अग्नि को संबोधित करते हुए कहा है, हे अग्नि जन्म के समय तू वरुण है, समृद्ध होने पर तू मित्र है, तू शक्ति का पुंज है, सब देव तुझ में केंद्रित हैं, तू ही उपास्य मनुष्य के लिए इंद्र है। यही भाव कितने ही अन्य मंत्रों में भी प्रकट किया गया है। ऋषि भार्गव गुत्तस्मद ने अग्नि की स्तुति करते हुए कहा है, हे अग्नि तू ही इंद्र है, तू ही वृषभ है, तू ही उरु गाय विष्णु है, तू ही ब्रह्मा और बृहस्पति है। इसी सूक्त में आगे चलकर अग्नि को राजा वरुण मित्र अर्यमा पूषण रुद्र मरुत और सविता कहा गया है। जब अग्नि इंद्र वरुण मित्र रुद्र आदि एक ही सत्ता के विविध नाम हैं तो उन्हें पृथक देवता मानने का कोई कारण नहीं रहता। इसी तथ्य को ऋग्वेद में और भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रकट कर दिया गया है कि इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, सुपर्ण, गरुत्मान, मातृस्वा आदि सब एक ही सर्वोच्च सत्ता के विविध नाम हैं। यही बात अन्यत्र इस ढंग से कही गई है, उसके एक होते हुए भी विद्वान लोग बहु प्रकार से उसकी कल्पना करते हैं। अथर्ववेद में तो विश्व की एक सर्वोच्च सत्ता को और भी अधिक सबल रूप से प्रतिपादित किया गया है। उसके 13वें अध्याय में स एस एक एक ब्रिदेक एव, वह एक ही है, अकेला वर्तमान वह एक ही है। और यत एतम देव में वृतम वेद, जो इस एक वेद को एकाकी रूप से सर्वत्र व्यापक जानता है, कह कर स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया गया है कि सर्वे अस्मिन् देवो एक वृतो भवन्ति, अर्थात सब देव इसमें एक रूप हो जाते हैं। यह सर्वथा स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों की दृष्टि में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि विविध देवता एक ही सत्ता के विभिन्न नाम थे, और इनकी स्तुति में इनके जो गुण कहे गए हैं वे उस एक सर्वोच्च सत्ता के ही विभिन्न गुण हैं। इंद्र आदि की देवताओं के रूप में कोई पृथक सत्ता नहीं है। यदि देवताओं की कोई पृथक सत्ता न मानी जाए तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदों में जो इंद्र आदि देवताओं के हाथों, पैरों, मुख, जिह्वा आदि का उल्लेख है, उनमें उनके जो विविध प्रकार के वस्त्र वर्णित हैं, उनके जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं, और उन्हें जो अनेक विध रथों पर सवारी करते हुए प्रदर्शित किया गया है, उसका क्या अभिप्राय है। वस्तुतः ये सब वर्णन आलंकारिक रूप से हैं, जैसा कि इसी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। सूर्य ऐसे रथ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष का भ्रमण करते हैं जिसमें 7 अश्व जूते रहते हैं। यह वर्णन स्पष्ट रूप से आलंकारिक है। सूर्य के 7 अश्व उसकी रश्मियों के सूचक हैं। इंद्र, अग्नि आदि देवताओं को जो मानव रूप से चित्रित किया गया है, उसका प्रयोजन यही है कि विश्व की सर्वोच्च सत्ता के विशिष्ट गुणों एवं रूपों को आलंकारिक ढंग से प्रकट किया जाए। वैदिक देवताओं के स्वरूप के संबंध में जो दो मत हमने प्रस्तुत किए हैं, उनमें से कौन युक्ति संगत व मान्य है, इसका विवेचन विशेष लाभदायक नहीं होगा। यहाँ इतना लिख देना ही पर्याप्त है कि वैदिक ऋषि जब इंद्र, अग्नि, वरुण आदि देवताओं की स्तुति करते हैं, वे यह दृष्टि में रखते हैं कि ये सब देवता एक ही सर्वोच्च सत्ता या देवों के भी देव के अंगभूत या विशिष्ट रूप ही हैं। तीसरा, यागिक विधि विधान। वैदिक युग के देवता विविध प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप थे, और आर्य लोग इन देवताओं के रूप में विश्व की मूलभूत अधिष्ठात्री शक्तियों की ही उपासना किया करते थे। यह मत पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। देवताओं की पूजा और तृप्ति के लिए आर्य लोग यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, जिनका स्वरूप प्रारंभ में बहुत सरल था। यज्ञ कुंड में यज्ञी का आधान कर उसमें घृत, अन्न, सोमरस आदि की आहुतियां दी जाती थी, जिनके संबंध में यह समझा जाता था कि अग्नि द्वारा वे देवताओं के पास पहुंच जाती है। यज्ञ उस भावना के भी प्रतीक थे जिसके कारण मनुष्य केवल अपने ही सुख साधन के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपितु अपने धन तथा अपने को दूसरों के लिए अर्पित करता है। घृत, अन्न आदि की आहुति देते हुए जो मंत्र बोले जाते हैं, उनके साथ इदम न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है, इसी कारण कहा जाता है, ताकि यज्ञ करने वाले व्यक्ति के मन में इस यज्ञीय भावना का विकास हो कि उसका द्रव्य केवल उसके अपने लिए ही नहीं, अपितु उसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। पर धीरे धीरे यज्ञों का रूप बहुत जटिल होता गया। ब्राह्मण ग्रंथों के काल में यज्ञों की जटिलता चरम सीमा तक पहुंच गई थी। यज्ञ वेदी की रचना किस प्रकार की जाए, यज्ञ कुंड में यज्ञ अग्नि का आधान कैसे किया जाए, किस ढंग से आहुतियां दी जाए, यज्ञ करते हुए यजमान अधवरयु ऋत्विक आदि कहाँ और किस प्रकार बैठें, वे कैसे मंत्रोच्चारण करें, कैसे ज्ञात हो कि सब देवता यज्ञ की आहुति को ग्रहण करने के लिए पधार गए हैं, किन पदार्थों की आहुति दी जाए, इस प्रकार के विषयों का ब्राह्मण ग्रंथों में बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। किस यागिक विधि का क्या प्रयोजन है, यह भी उनमें विशद रूप से वर्णित है। अब आर्य जनता के एक भाग का यही कार्य हो गया था कि वह इन यागिक विधि विधानों में प्रवीणता प्राप्त करे और उनकी प्रत्येक विधि का सही ढंग से अनुष्ठान करे। इसी वर्ग के लोगों को अब ब्राह्मण कहा जाने लगा था। ये ब्राह्मण यागिक कर्मकांड में पुरोहित का कार्य करते थे। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रत्येक गृहस्थ को अनेक प्रकार के संस्कार भी करने होते थे और इन संस्कारों का स्वरूप भी यज्ञों का ही था। विविध प्रकार के यज्ञ आर्य गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञों का अनुष्ठान आवश्यक समझा जाता था। ये यज्ञ निम्नलिखित थे। पहला देव यज्ञ, प्रातः और साय दोनों कालों में विधि पूर्वक अन्नाधान कर जो हवन किया जाए उसे देव यज्ञ कहते थे। दूसरा पितृयज्ञ, पितरों और पूजनीय व्यक्तियों के तर्पण व सम्मान का नाम पितृय यज्ञ था। तीसरा नृयज्ञ अर्थात अतिथियों की सेवा व सत्कार को नृय यज्ञ या अतिथि यज्ञ कहा जाता था। चौथा ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रतिपादित तथ्यों व ज्ञान का नियम पूर्वक अध्ययन मनन स्वाध्याय एवं ज्ञान में वृद्धि के प्रयत्न को ब्रह्म यज्ञ नाम दिया गया था। भूत यज्ञ, विविध जीव जंतुओं को बलि प्रदान कर संतुष्ट रखने से भूत यज्ञ संपन्न होता था। गृहस्थ का यह भी कर्तव्य माना जाता था कि वह कुत्ते कौवे और चींटी सदृश जीव जंतुओं का भी पालन पोषण करे। इस प्रयोजन से घर में बने भोजन का एक अंश विविध जीव जंतुओं के लिए भी पृथक कर दिया जाता था। इसी को बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहते थे। 5 महायज्ञों में जिसे देव यज्ञ कहा गया है वही अग्निहोत्र भी कहता था, जिसका अनुष्ठान प्रत्येक आर्य गृहस्थ प्रातः साय दोनों समय करता था। इन दैनिक यज्ञों के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर विशेष यज्ञ भी किए जाते थे। अमावस्या के दिन दर्श यज्ञ किया जाता था और पूर्णमासी के दिन पौर्णमास यज्ञ, कार्तिक मार्ग शीर्ष और माघ मासों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अष्टका यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रावणी यज्ञ और अग्रहायन अर्थात मार्ग शीर्ष मास की पूर्णिमा को अग्रहायनी यज्ञ किए जाते थे और इसी प्रकार चैत्र मास की पूर्णिमा के लिए चैत्री यज्ञ का और आश्विन मास की पूर्णिमा के लिए आश्वयुजी यज्ञ का विधान था। कतिपय यज्ञ ऐसे भी थे जिनके लिए प्रचुर द्रव्य की आवश्यकता होती थी और जिन्हें संपन्न व्यक्ति ही संपादित कर सकते थे। ऐसा एक यज्ञ सोम यज्ञ था जिसके लिए 3 वेदियां बनाई जाती थी। सोम यज्ञ एक दिन में भी पूरा किया जा सकता था, 2 दिन से लेकर 12 दिन तक भी और इससे भी अधिक समय तक। एक अन्य यज्ञ अग्निस्तोम था जो 5 दिनों में पूर्ण होता था। चातुर्मास यज्ञ को 4-4 महीनों में संपन्न किया जाता था। जब किसी व्यक्ति को राजा के पद पर अधिष्ठित करना होता था तो राजसीय यज्ञ करना आवश्यक था। राजसीय किए बिना कोई व्यक्ति राजा के पद को नहीं प्राप्त कर सकता था। सार्वभौम व चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले राजा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। इस यज्ञ में एक सुसज्जित अश्व को एक को अन्य अनेक अश्वों तथा बहुत से रक्षकों के साथ स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और जब वह विविध दिशाओं में प्रदेशों में विचरण कर निर्विघ्न वापस लौट आता था, तब अश्वमेघ यज्ञ की विधि संपन्न की जाती थी। अन्य सब प्रदेशों के राजाओं ने अश्वमेघ याजी राजा की सार्वभौम सत्ता को स्वीकार कर लिया है, यही प्रमाणित करना इस यज्ञ का प्रयोजन था। एक अन्य यज्ञ सौत्रामणि था, जिसमें सुरापान की प्रथा भी चल पड़ी थी, पर अपस्तंभ सौत्र सूत्र के अनुसार सौत्रामणि यज्ञ में पयह का पान ही पर्याप्त था, सुरापान की अनिवार्यता नहीं थी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक यज्ञों का विधान ब्राह्मण ग्रंथों तथा श्रौत सूत्रों में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में अजामेघ, गौमेध और पुरुष मेध सदृश ऐसे यज्ञों का भी विधान है, जिनसे बकरी व गाय जैसे पशुओं तथा मनुष्यों की यज्ञ में बलि दिए जाने की बात सूचित होती है। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन भारत में एक ऐसा समय आ गया था जबकि यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी थी, और यज्ञ कुंडों के समीप ऐसे यूपों का निर्माण किया जाने लगा था जिनसे बद्ध पशुओं को बांधा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय 6वीं सदी ईसा पूर्व में इस प्रकार पशु बलि दिए जाने के प्रमाण विद्यमान हैं, पर यह भी निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि प्रारंभ में यज्ञों में केवल दुग्ध, घृत, सोमरस और अन्न आदि की ही आहुतियाँ दी जाती थी, तब पशु बलि का विधान नहीं था। शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ में पशुओं के आलंबन का विधान अवस्था पर कतिपय विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि आलंबन का अर्थ केवल बध ही नहीं होता अपितु स्पर्श भी होता है। इन विद्वानों के मत में ब्राह्मण ग्रंथों में अजामेघ और गौमेव सदृश यज्ञों में जहाँ अजा और गौ के आलंबन का विधान है, वहाँ इस पशुओं का स्पर्श ही अभिप्रेत है, बध नहीं। ऐत्रेय ब्राह्मण, आश्वलायन, श्रौत सूत्र आदि प्राचीन ग्रंथों में सुनह सेप का आख्यान किया गया है, जिससे कतिपय विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है कि वैदिक एवं उत्तर वैदिक युगों में यज्ञों में मनुष्य की बलि देने की प्रथा भी विद्यमान थी, और ऐसे यज्ञ को ही पुरुष मेघ या नर मेघ यज्ञ कहा जाता था। इस आख्यान के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित के स्थान पर यज्ञ में बलि देने के लिए अजीगर्त नामक निर्धन ब्राह्मण से उसके पुत्र सुनहसेप को खरीद लिया था, पर विश्वामित्र ने सुनहसेप की प्राण रक्षा की और उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आख्यान के अनुसार यद्यपि सुनहसेप की यज्ञ में बलि नहीं दी गई, पर अजीतगर्त से बलि के लिए उसका क्रय किया जाना नर बलि की प्रथा की सत्ता को सूचित करता है। अजीतगर्त का पुत्र यह सुनहसेप ऋग्वेद के अनेक सूक्तों प्रथम मंडल 24-30 सूक्त तक का ऋषि है, अनेक सूक्तों का ऋषि है, और 24वें सूक्त में दो मंत्रों कोष्टक में मंत्र 12 और 13 कोष्टक बंद में सुनहसेप के पासवध होने तथा उसकी विमुक्ति के लिए वरुण से प्रार्थना किए जाने का भी उल्लेख है, पर अजीगर्त सुनहसेप के इन सूक्तों में प्रधानतया वरुण की स्तुति की गई है, और उनमें उन देवता को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, पापों का विनाश करने वाला, जीवन प्रदान करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद के 24वें सूक्त के 9, 10 और 11 मंत्रों में वरुण की स्तुति इसी रूप में की गई है, अतः उनके बाद के मंत्रों में पासवध सुनहसेप की विमुक्ति की जो प्रार्थना है, उसका अभिप्राय यही हो सकता है कि विविध प्रकार के पापों, प्रलोभनों व कामनाओं में बद्ध मनुष्य को पाप मुक्त करने के लिए प्रार्थना की जाए। वेद के इसी मूल कथन को लेकर बाद के समय में उन आख्यानों का विकास हुआ जिनमें सुनह सेप को यज्ञ में बलि देने के प्रयोजन से क्रय किए जाने की बात कही गई है। यागिक कर्मकांड के अत्यधिक जटिल एवं विशद हो जाने का एक परिणाम यह हुआ कि इस कर्मकांड का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित अनेक वर्गों में विभक्त हो गए। किसी एक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं रह गया कि वह यज्ञों की संपूर्ण विधियों का अकेले अनुष्ठान करा सके। यज्ञ कराने वाले पुरोहितों के चार मुख्य वर्ग थे। पहला होता, होत्री वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करते थे। दूसरा उद्गाता, उद्गात्री वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते थे। गे साम मंत्रों का संकलन साम वेद से किया गया था। तीसरा अधवर्यु, यागिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करना अधवर्यु वर्ग के पुरोहितों का कार्य था। चौथा ब्रह्मा, यज्ञ की सब विधियां सही रूप से की जा रही है और मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से किया जा रहा है, यह देखना ब्रह्मा का कार्य था। संस्कार, वैदिक युग के धार्मिक जीवन में संस्कारों का स्थान भी बड़े महत्व का था। इनकी कुल संख्या 16 थी, पर उनमें निम्नलिखित संस्कार विशेष महत्व के थे। पहला गर्भाधान संस्कार, इसे संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता था। दूसरा पुंसवन संस्कार, इस संस्कार द्वारा यह आशा की जाती थी कि बलवान स्वस्थ और सुयोग पुरुष संतान उत्पन्न होगी। तीसरा सीमंतोनयन, इस संस्कार द्वारा पति पत्नी के गर्भ की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के विधि विधानों का अनुष्ठान करता था। चौथा जातकर्म, बच्चे को उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार। पांचवा नामकरण संस्कार। छठा अन्नप्राशन, यह संस्कार बच्चे को अन्न देना प्रारंभ करने के समय किया जाता था। सातवा चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार। आठवा उपनयन, यह संस्कार शिक्षा प्रारंभ करने के समय यज्ञोपवीत धारण कराने के लिए किया जाता था। नौवा समावर्तन, शिक्षा की समाप्ति पर जब ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए घर लौटता था तो यह संस्कार किया जाता था। दसवां विवाह संस्कार। ग्यारहवां अंत्येष्टि संस्कार, अर्थात यह संस्कार सबका दाह करने के लिए विवाह किया जाता था। यह संस्कार सबका दाह करने के लिए किया जाता था। चौथा धार्मिक मंतव्य और आदर्श। वैदिक युग में आर्यों के कतिपय ऐसे मंतव्य एवं आदर्श थे जिन्होंने कि उनके धार्मिक जीवन को अनुप्राणित किया हुआ था। इनमें एक मुख्य मंतव्य रीत या सत्य का था। वैदिक साहित्य में यह विचार अनेक स्थानों पर विद्यमान है कि इस संसार में सर्वत्र कुछ निश्चित नियम कार्य कर रहे हैं। सृष्टि की इस नियमबद्धता के लिए ही रित शब्द का प्रयोग वेदों में किया गया है। रित वे नियम हैं जो नित्य तथा अनादि हैं, जिनका किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सूर्य जो नियम से उदित होता है, तारा नक्षत्र जो अपने अपने स्थान पर रहते हुए संचारी दशा में रहते हैं, समय पर जो फल फूल परिपक्व होते हैं, वह सब रीत के कारण ही है। केवल प्रकृति का ही नहीं अपितु प्राणियों तथा मनुष्यों के जीवन आधार भी रीत ही है। मनुष्य का हित और कल्याण इसी में है कि वह रीत के नियमों का परिज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन की उनके साथ अनुकूलता स्थापित कर ले। जिस तत्व ने संपूर्ण सृष्टि और उसके विविध रूपों का धारण किया हुआ है वह रित ही है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त के अनुसार जो विविध तत्व पृथ्वी का धारण करते हैं उनमें उग्र रित और बृहत सत्य का प्रमुख स्थान है। मानव जीवन और मनुष्य समाज के लिए सत्य का जो महत्व है उसका विचार रित से ही प्रादुर्भाव प्रादुर्भूत हुआ। प्रकृति के रित रूपी शाश्वत नियमों को दृष्टि में रखकर ही भारत के प्राचीन विचारकों ने यह प्रतिपादित किया कि सत्य ही धर्म का मूल है। धर्म वह है जिसका पालन कर मनुष्य इस लोक में अपना अभ्युदय कर सकता है और जिस द्वारा परलोक में मोक्ष या निःश्रेयस की प्राप्ति संभव होती है। पर यह धर्म मनुष्यकृत नहीं होता, इसके नियमों व मंतव्यों का निर्धारण मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि धर्म सत्य पर आश्रित होता है और सत्य उस रीत या शाश्वत नियमबद्धता पर जो अनादि है, जो मनुष्यकृत नहीं है। वेदों के अनुसार पृथ्वी लोक, धीयू लोक और अंतरिक्ष लोक सब सत्य और रीत पर ही आधारित हैं। रीत और सत्य के ये विचार भारत के धार्मिक जीवन को सदा प्रभावित करते रहे हैं। वैदिक युग के धर्म की एक विशेषता उसकी अध्यात्म भावना है। यह जो आँखों से दिखाई देने वाला इंद्रिय गोचर संसार है, इस भौतिक जगत से परे भी कोई सत्ता है। वेदों में यह विचार भली भांति प्रतिपादित है। इस शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा है, जो शरीर के नष्ट हो जाने के साथ नष्ट नहीं हो जाती। जिस प्रकार शरीर का स्वामी जीवात्मा है, वैसे ही संपूर्ण विश्व का स्वामी परमात्मा है, जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है। प्रकृति और सृष्टि की सब शक्तियाँ इस परमात्मा से ही जीवन और बल प्राप्त करती है। शरीर और संसार नश्वर है, पर आत्मा और परमात्मा नित्य, अनादि, अनंत और अनश्वर है। शरीर और संसार शांत हैं, अतः वे परम सत्य नहीं है। भौतिक सुख और संसार के भोग क्षणिक हैं, शांत हैं। वास्तविक सुख आध्यात्मिक है, जिसे आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का अंतिम व चरम ध्येय सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर मोक्ष व निःश्रेयस को प्राप्त करना है। यह अध्यात्म भावना वैदिक युग के आर्यों के जीवन लक्ष्य को ऊंचा उठाने में बहुत सहायक हुई, पर इसने उन्हें संसार के प्रति विमुख नहीं किया। वे धर्म का यह लक्षण करते थे जिससे इस लोक में अभ्युदय अर्थात समृद्धि व उन्नति हो, और जो निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो, वह धर्म है। वह धर्म अपूर्ण है जो केवल निःश्रेयस की वह धर्म अपूर्ण है जो केवल निःश्रेयस की प्राप्ति में सहायक होता है। साथ ही वह धर्म भी अपूर्ण है जिससे मनुष्य केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इह लोक में सुख और परलोक का साधन दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए वैदिक युग में भौतिक उन्नति तथा सांसारिक सुख की उपेक्षा नहीं की गई थी। वैदिक ऋषियों का कथन था, देखो यह सूर्य निरंतर गतिशील रहता है, तुम भी निरंतर गतिशील रहो। निरंतर गतिशील रहने से ही मधु और स्वादु उदुम्बूर को प्राप्त किया जाता है। गतिशील रहकर सांसारिक उन्नति और भौतिक अभ्युदय के लिए प्रयत्न करते रहो, पर साथ ही यह भी सदा स्मरण रखो कि जीवन का परम लक्ष्य इससे भिन्न है। इस जगत में जो कुछ भी है, उस सब में ईश्वर व्याप्त है, अतः संसार में लिप्त न होकर त्याग की भावना के साथ इसका उपभोग करो। वेद का यही उपदेश है। वैदिक युग में भारतीयों का धार्मिक जीवन इस विचार से सदा प्रभावित रहता था। वैदिक युग के आर्यों का विश्वास था कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है, वह वस्तुतः चोला बदल लेने के समान है। जैसे मैले कपड़े उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहनता है, वैसे ही वृद्ध व रोगग्रस्त शरीर को त्याग कर जीवात्मा नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु के पश्चात जीवात्मा किस कुल में जन्म ले, किस योनि में प्रवेश करे, यह बात उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य यदि इस जन्म में अपने सुकृत्यों का फल प्राप्त नहीं करता तो अगले जन्म में उनका फल वह अवश्य प्राप्त कर लेता है। पुनर्जन्म और कर्म फल के सिद्धांतों का वैदिक युग के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पांचवा, शिक्षा और धर्म। वैदिक युग में शिक्षा का बहुत महत्व था। यह माना जाता था कि सब बालकों और बालिकाओं को शिक्षा के लिए आचार्य कुलों में भेज देना चाहिए और उन्हें माता पिता से पृथक होकर आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बच्चे एक आयु तक माता के प्रभाव में रहते हैं, फिर पिता के और बाद में आचार्य के। उनकी अंतर्हित शक्तियों व गुणों का विकास पहले माता करती हैं, फिर पिता और अंत में आचार्य के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करके ही वे अपना विकास करने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार माता बच्चे को गर्भ में धारण करती है, वैसे ही आचार्य शिष्यों को अपने गर्भ में धारण कर उन्हें बाह्य प्रभावों से मुक्त रखता है और वे उसी के प्रभाव में रहकर बड़े होते हैं। यह भाव एक वेद मंत्र में प्रकट किया गया है। बालकों और बालिकाओं को उपनयन संस्कार के पश्चात आचार्य कुल में निवास करना होता था और वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। उपनीत अर्थात जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है, ब्रह्मचारी का उपनीत ब्रह्मचारी का उल्लेख ऋग्वेद में आया है और उसे देवों का एक अंग कहा गया है। अथर्व वेद में ब्रह्मचर्य की महिमा का सुंदर रीति से वर्णन विद्यमान है, जिससे यह भी सूचित होता है कि बालकों के समान बालिकाएं भी आचार्य कुलों में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या का अध्ययन किया करती थी। अथर्व वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ होता है और ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचार्य वह योग्यता प्राप्त करता है जिससे कि वह ब्रह्मचारियों को विद्या दान कर सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके ही मनुष्य तेजोमय ब्रह्म अर्थात ज्ञान को धारण करता है और वह सब देवताओं का अधिवास बन जाता है अर्थात सब देवी गुणों को प्राप्त कर लेता है। एक अन्य वेद मंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के तप से ही देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और ब्रह्मचर्य द्वारा ही इंद्र ने देवों को स्व अर्थात सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर दिया था। शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता था। इस अवसर पर बालकों और बालिकाओं को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। तीन धागों से बना हुआ यज्ञोपवीत उन तीन व्रतों का प्रतीक था जिन्हें ब्रह्मचारी ग्रहण करते थे। वैदिक साहित्य में यज्ञोपवीत को परम पवित्र आयुष अर्थात दीर्घायु प्रदान करने वाला और शूद्र कहा गया है। इसे धारण करने के अनंतर ही बालक आचार्य कुल में निवास करने का अधिकारी हो सकता था। जब कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए आचार्य कुल में जाता था तो आचार्य उससे प्रश्न करता था, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? विद्यार्थी के यह कहने पर कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ, आचार्य उससे कहता था, नहीं, तुम इंद्र के ब्रह्मचारी हो, तुम अग्नि के ब्रह्मचारी हो और मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। इंद्र को देवताओं का राजा माना गया है और अग्नि द्वारा यागिक कर्म कांड का अनुष्ठान होता है। देवों और पितरों द्वारा जिन विद्याओं का ज्ञान का विकास पहले किया जा चुका था उन्हीं की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचारी आचार्य कुल में प्रवेश किया करते थे। अतः वे स्वाभाविक रूप से देवों के राजा इंद्र के ब्रह्मचारी हुआ करते थे। सब धार्मिक कृत तथा यागिक अनुष्ठान अग्नि द्वारा ही संपादित होते हैं और आचार्य कुल में निवास करते हुए ब्रह्मचारियों को प्रातः सायं अग्निहोत्र करना होता था। इस कारण उन्हें अग्नि का ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। आचार्य कुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। वे भैक्षचर्या अर्थात भिक्षा द्वारा भोजन वस्त्र आदि प्राप्त किया करते थे और भिक्षा में उन्हें जो कुछ मिलता था उसे वे आचार्य की सेवा में प्रस्तुत कर देते थे। आचार्यों उपाध्यायों, अध्यापकों और उनके शिष्य वर्ग का निर्वाह इस भिक्षा द्वारा ही होता था। उस युग में जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम होती थी। आचार्य कुल नगरों और ग्रामों से दूर आरण्यक आश्रमों में स्थित होते थे। समीप के अरण्यों अर्थात जंगलों में ईंधन, कंद मूल, फल, बलकल आदि की सुविधा रहती थी। ब्रह्मचारी इनका भी चयन कर लिया करते थे। साथ ही आचार्य कुलों में गौ आदि पशु भी अच्छी बड़ी संख्या में होते थे और उनका पालन पोषण ब्रह्मचारियों द्वारा किया जाता था। आचार्य कुल की दूध, घी आदि की आवश्यकता इन पशुओं द्वारा ही पूरी हो जाया करती थी। आचार्य कुल के साथ गौशालाओं की सत्ता प्रायः अनिवार्य मानी जाती थी। शिक्षकों में सर्वोच्च स्थिति आचार्य की होती थी। यास्क के निरुक्त के अनुसार आचार्य उसे कहते थे जो आचार अर्थात सदाचार का ग्रहण कराए, जो आचार अर्थात सदाचार का ग्रहण करे कराए। इसमें संदेह नहीं कि बालक और बालिकाओं को सदाचारी एवं धार्मिक बनाना आचार्य कुलों का प्रधान कर्तव्य था और यह कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराया जाता था। मनुस्मृति में आचार्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है, जो द्वित्र शिष्य का उपनयन संस्कार करा के उसे वेद पढ़ाए और साथ ही कल्प वेदांग की उसके रहस्यों के साथ शिक्षा दे उसे आचार्य कहते हैं। आचार्य कुल में आचार्य का प्रधान स्थान होता था और ब्रह्मचारियों को सदाचारी बनाने के अतिरिक्त वेद तथा वेदांग की शिक्षा देने का कार्य भी वही करता था। आचार्य के अधीन जो अन्य शिक्षक आचार्य कुलों में अध्यापन का कार्य करते थे वे उपाध्याय कहते थे। मनु के अनुसार जो द्विज वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्यापन करे और उसके लिए वृत्ति अर्थात वेतन या पारिश्रमिक भी ग्रहण करे वह उपाध्याय कहता था। तैत्रीय उपनिषद में उन नियमों व आदर्शों का बड़े विशद रूप से निरूपण किया गया है जिन्हें आचार्य कुल में रहते हुए गुरुओं तथा शिष्यों को सदा अपने सम्मुख रखना होता था। उन्हें अर्थात शिष्यों को अध्ययन करते हुए और गुरुओं को अध्ययन करते हुए रित, सत्य, तप, दम, सम, अग्निहोत्र का अनुष्ठान, अतिथि सेवा, सब मनुष्यों के प्रति समुचित व्यवहार और अपने साथियों के प्रति कर्तव्य पालन का सदा ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक आचार्य कुल में निवास कर जब विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण कर लेते थे तो उनका समावर्तन अर्थात दीक्षांत संस्कार होता था। इस अवसर पर जो उपदेश आचार्य द्वारा शिष्यों को दिया जाता था तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार वह इस प्रकार था। सदा सत्य भाषण करना, सदा धर्माचरण करना, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना, आचार्य को जो धन प्रिय हो वह दक्षिणा रूप में प्रदान करना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना ताकि संतान उत्पन्न कर वंश की परंपरा को छीन होने से बचाया जा सके, सत्य आचरण में कभी प्रमाद न करना, धर्म के आचरण में कभी प्रमाद न करना, कुशल जीवन बिताने में कभी प्रमाद न करना, देव कार्यों अर्थात देव पूजा व देव यज्ञों और पितृ कार्यों अर्थात माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा व पितृ यज्ञ में भी कभी प्रमाद न करना, सदा माता की सेवा में तत्पर रहना, सदा माता पिता की सेवा में तत्पर रहना, सदा अतिथियों की सेवा में तत्पर रहना, जो कार्य दोष रहित हो केवल उन्हीं को संपन्न करना, हमारे केवल ऐसे कार्यों का ही अनुसरण करना जो समुचित हो और सदाचरण के अनुरूप हो, हमारे अनुचित कार्यों का कदापि अनुसरण न करना, सदा दान में तत्पर रहना, श्रद्धा पूर्वक दान दिया करना, यदि श्रद्धा न हो तो भी दान देना, लज्जावश भी दान देना, भीतिवश भी दान देना, प्रतिज्ञात धन को प्रदान करने में सदा तत्पर रहना। यदि तुम्हें कभी इस बात में संदेह हो कि क्या कर्तव्य या अकर्तव्य है, कौन सा आचरण समुचित या असमुचित है, कौन सा आचरण समुचित या अनुचित है और क्या ज्ञातव्य या अज्ञातव्य है, तो यह देखना कि धर्मयुक्त परम विद्वान और सदाचारी ब्राह्मणों का संदिग्ध विषय के प्रति क्या रुख है। वे जैसा करते हों वैसा ही तुम्हें करना है। यही मेरा आदेश है, यही मेरा उपदेश है और यही वेदों तथा उपनिषदों का विधान है। शिक्षा विषय के कतिपय तथ्य वैदिक युग के धार्मिक जीवन के संबंध में भी समुचित प्रकाश डालते हैं। समाप्त।